समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे, जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं।
नमस्कार दोस्तों, वक्त की चाल कभी थमती नहीं है और न ही थमती हैं उस चाल को बताने वाली हमारी स्टूडियो की घड़ी की सुइयां, जो बता रही हैं कि बज चुके हैं शाम के 4:30, यानी वक्त हो गया है आपकी पसंदीदा न्यूज मैगजीन परिक्रमा का, जिसमें दोस्तों हम लेकर आते हैं आपके लिए वो तमाम जानकारियां जिनसे है आपका सरोकार। दोस्तों आधा घंटे की इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास आज उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर रहती है हमारी बराबर नजर, और फिर हम याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। दोस्तों परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा, और मेरे साथ हैं आप सबकी जानी पहचानी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुनीश। मुनीश, डू यू बिलीव दैट डिविनिटी रिजाइड्स वेयर विमेन आर ऑनर्ड?
वेल, बिकॉज आर स्क्रिप्चर्स आल्सो से सो, एंड यस, एनीबॉडी, यानी जो दुनिया को देखता है करीब से, so he can be witness to this. Yes,
yes, of course. And this comes in my mind because in the morning I was going through the newspaper and I read that Australia got its first woman army chief, and the country joined a very short global list along with Canada and Slovenia.
Wonderful. That's a wonderful achievement indeed.
Yes, and over the past decade, India has also done something few nations have achieved at scale. It has moved women's empowerment from intent to infrastructure. This shift did not happen organically. It was designed. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, policy has placed women at the center of development, recognizing that when women move forward, entire economy accelerates. India's women have demonstrated time and again that they are more than ready for leadership. Rightly said by our Prime Minister, women are not just homemakers, they are nation builders. And India is actively shifting towards women-led development.
Yes, that's why we say, I mean, it has been a tradition in India that we believe in Yatra Naristu Pujyante Ramante Tatra Devata.
Exactly. On this positive, hopeful note, let's begin our afternoon news magazine with news headlines at this hour.
संसद के निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने सहित 3 विधेयकों पर लोकसभा में चर्चा हुई फिर से शुरू।
Women's Reservation Act 2023 comes into force. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's Nari Shakti as hallmark of strong India.
श्री हरिवंश नारायण सिंह तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए। प्रधानमंत्री ने कहा, श्री हरिवंश के पूर्व अनुभवों ने सदन की कार्यवाही को और अधिक प्रभावशाली बनाया।
Major political parties intensify campaigning in West Bengal and Tamil Nadu ahead of assembly elections.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इसराइल और लेबनन के बीच संघर्ष विराम की घोषणा का स्वागत किया और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्ण अनुपालन का आग्रह किया।
And in women's cricket, India to take on South Africa in first T20 international of 5-match series in Durban today. And now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about Nari Shakti Vandan Run to support women's empowerment initiatives.
आसमान
So listeners, when was the last time you woke up early for something truly meaningful?
देखिए जरा मुझे अगर आप अंदाजा लगाने दें तो मैं कहूंगा कि हो सकता है आज वही दिन हो, क्योंकि पूरे देश में बहुत ही जबरदस्त और कुछ प्रेरणादायक घटित हो रहा है.
Yes, the Ministry of Youth Affairs and Sports is bringing people together with the Nari Shakti Vandan Run, a celebration of women's strength, leadership and the spirit of a Viksit Bharat.
जी हाँ, और ये महज एक दौड़ नहीं है बल्कि एक आंदोलन है, एक ऐसा आंदोलन जो कहता है जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो पूरा देश आगे बढ़ता है.
So here's a quick question for our listeners. Are you ready to be a part of this change? Because this exciting run is happening across 7 major cities: Delhi, Cuttack, Patna, Mumbai, Indore, Bengaluru and Jaipur.
तो दोस्तों, अगर आप पटना या जयपुर में हैं तो आज 17 अप्रैल 2026 चमकने का दिन आपका है. और जो लोग दिल्ली, कटक, मुंबई, इंदौर और बेंगलुरु में हैं वो अपने अलार्म सेट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी दौड़ कल 18 अप्रैल 2026 को होगी.
The early morning energy, people gathering with enthusiasm, registering, smiling, ready to make a difference. Followed by an inspiring inauguration. Dignitaries being honored, powerful words from the chief guest and the heartfelt Nari Shakti pledge.
और फिर आता है सबसे बेहतरीन हिस्सा, यानी दौड़. मशहूर सार्वजनिक जगहों से गुजरता हुआ 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता, जहां आपका हर कदम सिर्फ फिटनेस को नहीं दिखाता है बल्कि एक संदेश देता है, समानता, सशक्तिकरण और एकता का संदेश.
तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो.
In Bihar, a Nari Shakti for Viksit Bharat run themed on Nari Shakti Vandan was organized today at Patna. Let's hear more on this from our correspondent.
Patna में आज नारी शक्ति वंदन थीम पर आधारित नारी शक्ति फॉर विकसित भारत दौड़ का आयोजन किया गया. ये दौड़ युवा कार्य और खेल मंत्रालय और माय भारत के सहयोग से आयोजित की गई. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जेपी गंगा पथ से इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी.
आज का दिन 17 अप्रैल इस देश के महिलाओं के क्रांतिकारी दिन होंगे, जिस दिन 543 से बढ़कर 816 सीट लोकसभा में होंगे, उसमें से एक तिहाई सिर्फ और सिर्फ महिलाएं.
पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह ने बताया कि संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन विधेयक को लेकर चल रही चर्चा के समर्थन में इस दौड़ का आयोजन किया गया है.
हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बिल को लेकर जो पार्लियामेंट हाउस में स्पेशल सेशन के माध्यम से बुलाया गया है उसके समर्थन में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ ही साथ जो एनडीए की सरकार है उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इतना ठोस कदम, इतना मजबूत कदम उन लोगों ने आज हमारे लिए लिया.
इस दौड़ में देश भर से लगभग 4000 महिलाओं और छात्राओं ने भाग लिया. परिक्रमा के लिए पटना से सविता पारीक.
दोस्तों, नारी शक्ति वंदन रन सभी पृष्ठभूमि की महिलाओं को एक साथ ला रहा है. विद्यार्थी, पेशेवर, उद्यमी, खिलाड़ी और नागरिक समाज के सदस्य सभी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं.
And the best part is, this massive participation is being powered by organizations like My Bharat, the National Service Scheme or NSS, the Sports Authority of India and many more partners.
तो जरा इस बारे में सोचिए, ये कितने कमाल की बात है कि सिर्फ एक पहल इतनी सारी आवाजों को आपस में जोड़ सकती है. जी हाँ, और ये दौड़ अकेले नहीं हो रही है बल्कि एक बहुत बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा है.
Right. It coincides with a special session of Parliament from 16th to 18th April 2026, where important discussions on women's representation and delimitation are taking place.
इसका मतलब है अनुजा, मुझे लगता है कि ये सिर्फ सड़कों पर दौड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि ये तो शासन, फैसले लेने और लोकतंत्र में आगे बढ़ने के बारे में भी है. क्यों?
So Manish, how important do you think women's participation is in shaping the nation's future?
Indeed, it is very important, or that's why we are celebrating, you know, this great event.
Yes, because that's exactly what this initiative is trying to highlight: awareness, engagement and action. It's about making every citizen a part of the conversation on inclusive representation.
और अपने मूल में यह आयोजन एक स्पष्ट संदेश देता है कि महिलाएं सिर्फ प्रतिभागी नहीं हैं, बल्कि वो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में उसकी यात्रा की अगुवा और बदलाव लाने वाली हैं और प्रमुख संवाहक भी हैं।
So as the country runs together, it also rises together, stronger, more inclusive and more empowered than ever before. Because when women lead, India succeeds.
तो चाहे आप एक धावक हो, एक समर्थक या फिर किनारे से हौसला बढ़ाने वाले कोई व्यक्ति, ये जुड़ने का आपका पल है। और ये न भूलें कि हर प्रतिभागी अपने साथ एक प्रमाण पत्र लेकर जाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो ये है कि वो अपने साथ गर्व और एक उद्देश्य भी लेकर जाते हैं। दोस्तों, आकाशवाणी से कार्यक्रम पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत आज जम्मू कश्मीर के प्रख्यात लेखक शफी शौक के साथ बातचीत प्रसारित की जाएगी। श्री शौक ने कश्मीरी साहित्य और भाषा संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान दिया है और उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया जाएगा।
मिर्ज़ा गालिब की बेहतरीन गज़लों का अंग्रेजी तर्जुमा किया, द बेस्ट ऑफ मिर्ज़ा गालिब्स पर्शियन पोएट्री, तो मेरी किताब से भी बहुत चली और बहुत पसंद की गई। इसी तरह मैं कभी उर्दू की बेस्ट सूफियाना पोएट्री को कश्मीरी में डाला, इसी तरह ऐसे ही काम करता रहा और अपनी शायरी और अफसाने लिखने के साथ साथ मेरी 106 किताबें छप चुकी।
And to listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashwani Gold today evening at 5:30 p.m. I beg your pardon, 5:10 p.m. You can also listen to it on News on EIR app and News on EIR official YouTube channel. It will also be broadcast tomorrow morning at 9:10 a.m.
और दोस्तों, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि क्या कुछ है खास उनके पास आपके और हमारे लिए।
एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट कॉमनली टॉक्ड टॉपिक टुडे इज विमेंस रिजर्वेशन द रिएक्शन। जनता दल यूनाइटेड एमपी संजय झा हैज वेलकम द विमेंस रिजर्वेशन बिल एंड डिस्क्राइब्ड इट एज अ लॉन्ग अवेटेड स्टेप। टॉकिंग एक्सक्लूसिवली टू आकाशवाणी न्यूज, मिस्टर झा सेड दैट द मूव टू प्रोवाइड 1/3 रिजर्वेशन फॉर विमेन हैज कम आफ्टर कंसिडरेबल डिले एंड शुड बी बैक्ड यूनानिमसली।
ये इतना स्वागत युक्त कदम है महिला।
द इंट्रोडक्शन ऑफ 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इज सच अ वेलकमिंग स्टेप। आई बिलीव इट हैज ऑलरेडी बीन लॉन्ग ओवर ड्यू। आई कम फ्रॉम बिहार वेयर मोर देन 50% ऑफ वुमेन आर इलेक्टेड इन पंचायत्स। इन द 2025 इलेक्शंस इन बिहार वुमेन वोटेड इन सिग्निफिकेंटली हायर नंबर्स। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ लार्ज वुमेन्स पार्टिसिपेशन हैज बिकम देयर।
आप समझ सकते हैं रुझान कितना बड़ा।
BJP MP Dinesh Sharma has also described the bill as historic and noted that it is an opportunity for the opposition to correct their mistakes.
ये ऐतिहासिक क्षण है जब कांग्रेस के पास और विपक्ष के पास दोनों के पास एक अवसर है अपनी पिछली गलतियों को ठीक करने का। 27 सालों से जो उन्होंने एक अन्याय किया था महिलाओं के आधी आबादी के साथ में कि उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया था पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में, अब वो देने का अवसर है तो उनके पास सुनहरा अवसर है कि अपनी पिछली भूलों का वो प्रायश्चित कर सके।
बॉलीवुड अभिनेत्री सयानी गुप्ता को फिल्म कहानी लेखन और प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन ने वर्ष 2026 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। इस महीने के अंत में उन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय में औपचारिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन हर साल पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान करता है जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में दक्षिण एशियाई पहचान और प्रतिनिधित्व के लिए कोई महत्वपूर्ण काम किया हो। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आज से 5 दिवसीय एकात्म पर्व का शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस आयोजन में शामिल होकर प्रदेश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को रेखांकित किया। पेश है ये रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओंकारेश्वर स्थित एकात्म धाम में आज से शुरू होने वाले 5 दिवसीय एकात्म पर्व का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती अद्भुत है, जहां हर युग में महान विभूतियों ने तप कर अपने ज्ञान से समाज का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर संत समाज की गरिमा में उपस्थिति रही। आदि गुरु शंकराचार्य के प्रकट उत्सव के अवसर पर आयोजित इस पर्व में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। आयोजन के दौरान 700 से युवा शंकर दूत के रूप में दीक्षा लेंगे। इसके साथ ही संतों का विमर्श, आध्यात्मिक प्रवचन और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने द्वारिका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी का सम्मान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। यह आयोजन मध्य प्रदेश की समृद्धि, आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता को सशक्त रूप से प्रस्तुत कर रहा है। परिक्रमा के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
वाराणसी जिले की स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को काशी प्रेरणा ब्रांड के जरिए बाजारों में एक मजबूत पहचान मिल रही है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी ये महिलाएं हर्बल साबुन, मसाले, दालें, अगरबत्ती और अन्य घरेलू और ऑर्गेनिक उत्पाद तैयार कर रही हैं। इन उत्पादों की गुणवत्ता और पैकेजिंग को आधुनिक बाजारों के अनुरूप तैयार किया गया है, जिससे ये बड़े ब्रांड्स को चुनौती दे रही हैं। इन सभी उत्पादों को काशी प्रेरणा ब्रांड के अंतर्गत एक साझा पहचान दी गई है और खास बात यह है दोस्तों कि ये उत्पाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी ऑथेंटिक काशी प्रेरणा के नाम से उपलब्ध हैं। इसके माध्यम से वाराणसी की ग्रामीण महिलाओं के हुनर को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजार तक पहुंच मिल रही है।
वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह का कहना है कि काशी प्रेरणा सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास और सम्मान का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार से जोड़ना, उनकी आय में वृद्धि करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। स्व सहायता समूह से जुड़ी अमृता बताती है कि सरकार के सहयोग और प्रशिक्षण के चलते महिलाएं घर की चौखट पार कर अपनी पहचान बना रही हैं। उनका कहना है कि काशी प्रेरणा के माध्यम से हमारी मेहनत और हुनर पहचान मिल रही है। काशी प्रेरणा पहल वाराणसी की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा देने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वाराणसी से मनीष सिंह के साथ परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार गोरखपुर से प्रेमचंद्र गुप्ता।
And now let's take you all to Panaji. Eminent scientist Dr. Raghunath Mashelkar has said that India should not imitate other nations but move ahead and lead them through innovation. Dr. Mashelkar was speaking after being conferred the Gomant Gaurav Award by Chief Minister Dr. Pramod Sawant at a function held at Kala Academy in Panaji. We have more on this from our correspondent.
Dr. Mashelkar stressed that science must be used to simplify the lives of common people. The event was jointly organized by the Goa Chamber of Commerce and Industry and World Peace University. Dr. Mashelkar dedicated the award to his mother, Anjani Mashelkar. On this occasion, he said that,
I don't believe in best practice. I believe in next practice. Because bulk of the time we are saying we are following the best practice. So that means we are copying. I don't want India to be a copying nation. I want to create us to create next practice. We become the best practice for others.
Speaking on the occasion, Chief Minister Sawant said a healthcare mechanism developed by Dr. Mashelkar will soon be implemented in Goa. He said the system will enable multiple medical tests at an affordable cost within minutes. An industry-academia collaboration agreement was also signed during the program. For Parikrama, Mahesh Sopade, Panji.
In a major step towards strengthening urban governance through digital transformation, the government of Odisha has successfully implemented the Odisha Secretariat Workflow Automation System. We have a report on this.
The Odisha Secretariat Workflow Automation System, or OSWAS, is implemented by the Housing and Urban Development Department of Odisha Government across 5 municipal corporations, 48 municipalities and 62 notified area councils in the state. OSWAS enables end-to-end digital management of official files at the urban local bodies. The digital platform ensures real-time tracking, role-based routing and time-bound decision-making, significantly enhancing administrative efficiency and accountability across municipal corporations, municipalities and notified areas. area councils. The statewide rollout is aimed at improving efficiency, accountability and transparency in municipal administration. One of the defining features of OSWAS is its ability to provide real-time dashboards for monitoring file movement and pendency, empowering officials at both urban local bodies and state levels with actionable insights. The implementation of the platform is not only reducing administrative delays but also strengthening the supervisory oversight and improving interdepartmental coordination. By bringing transparency, speed and accountability into everyday administration, the state government is empowering urban local bodies to deliver better and faster services to citizens. OSWAS is also helping the local bodies in the urban areas to become more responsive, efficient and citizen-centric. With OSWAS now fully operational across all the 115 urban local bodies, Odisha has set a benchmark in leveraging technology for governance reform. The initiative is expected to play a pivotal role in advancing state's vision of Viksit Odisha by fostering transparency, improving service delivery and strengthening the foundations of urban administration in the years to come. For Parikrama, this is Nirmalya Vera for Akashvani Katak.
And now let's take you to Visakhapatnam, where the P4 program of the Andhra Pradesh government is emerging as a strong model for building a poverty-free society. And with Visakhapatnam district setting an inspiring example, we have more on this from our correspondent.
The initiative is being implemented through the Swarnandra P4 Foundation to ensure inclusive growth through a public-private people partnership approach. The program focuses on identifying underprivileged families and connecting them with mentors, resources and opportunities for sustainable development. In Visakhapatnam district alone, over 66,000 families have already been adopted under this initiative, supported by more than 7,500 volunteers who are working as guides and facilitators in transforming lives. The impact of the program is clearly visible on the ground. Families that once struggled with limited access to healthcare, education and livelihood opportunities are now witnessing meaningful improvements. Better medical facilities, skill development programs and access to basic infrastructure are helping people move towards self-reliance and dignity. The state government structured approach, combined with active coordination by district officials, has ensured that the benefit reaches the right people. The initiative has also encouraged social responsibility among citizens, creating a collective effort towards poverty eradication. At a recent annual event held in Visakhapatnam, individuals who demonstrated exceptional commitment to social service were recognized, reflecting the growing public participation in the program. Officials highlighted that identifying and supporting every poor family remains a key goal, and efforts are continuing to expand the program further. Speaking on the occasion, District In Charge Minister Dola Sri Balaviranjane Swami stated that the large number of volunteers coming forward is a matter of pride, and such collective participation is essential to achieve complete poverty eradication. The success of the P4 program in Visakhapatnam demonstrates how focused governance, community participation and effective implementation can bring real and lasting change. As the initiative expands across the state, it is steadily moving Andhra Pradesh closer to its vision of a zero poverty society. Allu Murali for Parikrama, Akashvani News, Visakhapatnam.
And about the Hajj pilgrimage from India. The Hajj pilgrimage from India for the year 2026 is set to commence tomorrow, with the first batch of pilgrims scheduled to depart for Saudi Arabia from various embarkation points across the country. The Ministry of Minority Affairs said that over 1,75,000 pilgrims are expected to undertake the sacred pilgrimage of Hajj. Responding to the occasion, Union Minority Affairs Minister Kiran Rijiju extended his best wishes to all the pilgrims.
और दोस्तों अब चलते हैं लेकर आपको खेल के मैदान में और जानते हैं क्या है वहां की हलचल.
Yes, the Indian women's cricket team is set to face South Africa in a 5-match T20 international series, with the first match to be played today at Kingsmead, Durban. The match will start at 9:30 PM IST. What about IPL, Munish?
जी हां, IPL क्रिकेट में दरअसल आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होने वाला है और ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस प्रतियोगिता में कल रात मुंबई में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया था 7 विकेट से. और जी हां दोस्तों, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तित्वों की है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन.
We remember freedom fighter Valangaiman Sankaranarayana Srinivasa Shastri, who died on the 17th of April 1946. A member of the Servants of India Society, Shastri also served as a member of the Indian National Congress from 1908 to 1922.
Shastri was born on 22nd of September 1869 in Tanjavur district, Tamil Nadu. He met Gopal Krishna Gokhale for the first time in 1906 and was drawn towards Gokhale Servants of India Society. He joined the organization, becoming its president in 1915. He joined the Indian National Congress in 1908 and became the secretary of the Madras District Congress Committee in 1911.
Shastri served as a member of the Madras Legislative Council from 1913 to 1916, the Imperial Legislative Council of India from 1916 to 1919, and the Council of State from 1920 to 1925. He opposed the Rowlatt Act and delivered a well-appreciated speech in the Imperial Legislative Council denouncing the bill.
Shastri also functioned as India's delegate to the League of Nations and as member of the Privy Council of the United Kingdom and an agent to the Union of South Africa. In 1924, he accompanied Annie Besant on a visit to England demanding home rule for India.
Shastri was also a close friend and associate of Mahatma Gandhi, who addressed Shastri as his elder brother in writings.
During 1930 to 31, he participated in the roundtable conferences in London to discuss India's future and was instrumental in bringing about the Gandhi-Irwin Pact.
Today, we also honor Sarvepalli Radhakrishnan on his death anniversary, a teacher at heart who rose to become the President of India, proving that intellect and wisdom can shape the destiny of a nation. A distinguished philosopher, scholar and statesman, he carried Indian thought to the global stage and gave education a deeper purpose beyond classrooms. His life stands as a reminder that true leadership begins with knowledge and the ability to inspire minds.
और दोस्तों आज हम याद कर रहे हैं वीरता नेतृत्व और देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध सैनिक अधिकारी और जयपुर राजघराने के महाराजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह को आज उनकी पुण्यतिथि है भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान उन्होंने साहस और रणनीतिक कौशल का परिचय देते हुए शत्रु के ठिकानों पर सफल अभियान चलाया उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था सेना से सेवानिवृत्ति के बाद भी वो सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहे और समाज सेवा के कार्यों में योगदान भी देते रहे दोस्तों पौराणिक कथाओं और भारतीय संस्कृति को आधुनिक भाषा और शैली में प्रस्तुत करने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार नरेंद्र कोहली की भी आज पुण्यतिथि है उन्होंने रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों को उपन्यास के रूप में प्रस्तुत किया और हिंदी साहित्य में एक नई तरह की परंपरा की शुरुआत की उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में महासमर अभ्युदय दीक्षा और तोड़ो कारा तोड़ो विशेष रूप से उल्लेखनीय है उन्होंने कहानी उपन्यास नाटक और व्यंग्य सहित कई साहित्यिक विधाओं में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री और व्यास सम्मान जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया उनकी लेखनी ने भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी
And today we also pay tribute to Sivasankar Pillai. He is considered one of the pioneers of modern Malayalam literature, often referred to by his place of birth, Thakkari. Pillai, whose works would later earn him the moniker Kerala Maupassant, and he a winner of the Gyanpith Award in 1984 and Padma Bhushan, he is best known for his masterpieces Chimmiyar and Kayar.
और श्रोताओं अब समय हो चला है परिक्रमा के संक को यहीं समाप्त करने का तो अनुमति दीजिए अनुजा और मुझे यानी मुनीश को अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in आप हमारे ऐप पर भी हमें सुन सकते हैं दीजिए आज्ञा
नमस्कार, नमस्कार।